श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि परमेश्वर के दास यूहन्ना ने हमें बताया कि हमें किस प्रकार परमेश्वर के साथ सहभागिता में बने रहना है। मेरे मित्रों, आज उसी क्रम में हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से पहला यूहन्ना की पत्री से अपने अध्ययन को करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हम जब आपके वचन में से सुनते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, प्रत्येक के जीवन की जरूरतों के अनुसार उनसे बोलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार, निराश और परेशान हैं। पिता परमेश्वर, आप उन पर भी अनुग्रह करें, ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए, आपका वचन उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। आज के वचन पर अधिकाई से आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आप सब से कहा है कि हम इन दिनों पहला यूहन्ना की पत्री उसके एक अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। परंतु यहाँ एक समस्या है कि हम पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है, तो फिर यह सहभागिता कैसे संभव है? इस सहभागिता के तीन उपाय हैं। एक, हमने देखा कि परमेश्वर को अपने स्तर तक गिराने का प्रयास करें, जैसा प्रायः लोग पाप को तर्क के आधार पर स्वीकार्य योग्य बना देते हैं। परंतु यूहन्ना कहता है कि यदि हम कहें कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है और पाप में मग्न रहें और झूठ बोलें, तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमें पाप स्वीकार करना है, अर्थात पाप स्वीकार करो। दूसरा मार्ग है कि मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के स्तर तक ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। कुछ लोगों का कहना है कि वे पाप मुक्त सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, परंतु यूहन्ना कहता है, क्या कहता है, आइए हम पढ़ें पहला यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके 8 पद में। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जी हाँ, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यह तो झूठा होने से भी बुरा है। यदि आप कहते हैं कि आप में पाप नहीं है, तो आप में सत्य नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप झूठे हैं, परंतु यह कि आप में सच्चाई है ही नहीं। आप मनुष्य को नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बाइबल अध्ययन के लिए गया हुआ था और प्रशिक्षण में मुझे इस समस्या का भी सामना करना पड़ा था। छात्रावास में मेरा एक मित्र था जो कहता था कि उसमें कोई भी बुराई नहीं है, और उसने पिछले कुछ वर्षों में कभी भी पाप नहीं किया था। यह पहला मनुष्य था जिसके कहने को तो कोई भी पाप नहीं है, अर्थात उसने कोई पाप नहीं किया है। उस कमरे में कुछ भी गलत हो जाता तो दोषी कौन था? मैं, चाहे मैंने गलत किया हो या नहीं। पहले सत्र के बाद नए विद्यार्थी को स्वतंत्रता थी कि वह जिसके साथ रहना चाहे वह रह सकता है। अतः मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं आपका कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाना चाहता हूं, मैं कमरा बदल रहा हूं। तो वह निराश होकर कहने लगा, ओह नहीं, तुम कौन से कमरे में जाना चाहते हो? मैंने कहा, मुझे मेरे जैसा ही गलती करने वाला साथी मिल गया है। मेरे मित्रों, आज भी हम एक दूसरे से भेंट करते रहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपने सिद्धता प्राप्त कर ली है, तो मैं आपके जीवन साथी पर तरस खाता हूं, क्योंकि ऐसे मनुष्य के साथ जीवन निर्वाह करना अत्यधिक कठिन है। यूहन्ना कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। इस जीवन में सिद्धता प्राप्त करना संभव नहीं है। हम अपने में परमेश्वर के बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं या बन सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। अतः मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी एक अति उत्तम उत्साही विश्वासी से भेंट हुई। मेरे मन में उसके विरुद्ध कोई बुराई या आलोचना नहीं थी। एक दिन जब मेरी उससे भेंट हुई, तब उसने कहा कि पिछली रात वह शुद्ध हो गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने मुझे बताया कि वह ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब वह पाप नहीं कर सकता है। मेरे मित्रों, मैं तो उससे बहुत दिनों तक नहीं मिल पाया, परंतु वह मेरी कलीसिया के एक पदाधिकारी का पड़ोसी था। एक दिन उस मनुष्य का पुत्र घर आया और अपनी गाड़ी ऐसे खड़ी की कि उसका एक भाग एक पड़ोसी की भूमि में था। यह व्यक्ति वहां छप्पर डालना चाहता था, अतः उसने जाकर उससे गाड़ी सीधी करने को कहा और निवेदन किया, जिस पर वह ऐसा भड़का कि उसने प्रकट कर दिया कि वह कैसा पड़ोसी है। एक दिन बातों ही बातों में मेरी कलीसिया के पदाधिकारी ने मुझे इस घटना का वर्णन सुनाया, तो मैं निश्चय ही उससे भेंट करने के लिए गया। मैंने उससे कहा, क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि आप पवित्र हो गए हैं? उसने कहा, जी हाँ, और आप पवित्र होकर पाप मुक्ति के स्तर पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, मेरे विचार में। उसका कहना यही था, मेरे प्रियो, आपका पड़ोसी मेरी कलीसिया का सदस्य है और उसने आपके अभद्र व्यवहार की चर्चा मुझसे की है। यह व्यवहार बड़ा ही निर्दयी और मसीही विरोधी है। उसने बगल की ओर झांकते हुए कहा, मैं क्रोधित अवश्य हुआ, परंतु यह पाप तो नहीं है। यदि यह पाप नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना था, परंतु यह पाप तो नहीं है। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी अब आपके ऊंचे स्तर पर आ गया हूं। मैं पाप नहीं करता हूं और केवल गलतियां करता हूं, और बहुत गलतियां करता हूं। परंतु मेरे भाई, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि क्रोध करना और अपने पड़ोसी से झगड़ना जैसा आपने किया है वह पाप है। मेरे मित्रों, आप यदि कहते हैं कि आप में पाप नहीं, तो आप किसको धोखा देते हैं? आप परमेश्वर को धोखा नहीं देते, आप अपने पड़ोसी को धोखा नहीं देते, आप अपने मित्र को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप निश्चय ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यूहन्ना कहता है कि ऐसे मनुष्य में सत्य नहीं है, क्योंकि वह स्वयं को पापी मानने को तैयार नहीं है। वह तो यह भी नहीं मानता है कि वह सिद्धता प्राप्त नहीं कर पाया है। तथापि अनेक जन अपने और परमेश्वर के बीच मेल स्थापित करने का यही मार्ग खोजते हैं। अब आप परमेश्वर को अपने स्तर पर नहीं ला सकते और स्वयं भी परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकते, तो फिर क्या करें? यूहन्ना बताता है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है। आइए हम पढ़ें पहला यूहन्ना की पत्री 1:9। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, या फिर यदि शब्द आया है। हमने अनेक यदि देखे हैं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, 6 में हमने देखा, यदि जैसा वह ज्योति में है, 7 में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, 8 में है। अब पापी मनुष्य और परमेश्वर में मेल कराने का मार्ग यह है कि हम अपने पापों को मान लें। पापों को मान लेने का अर्थ क्या है? पापों को मान लेना एक ही यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ एक सी बात करना। आपको वही कहना है जो परमेश्वर कहता है। जब परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि आपने जो किया है वह पाप है, तो आपको परमेश्वर की दृष्टि से देखना है और परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं और मैं भी कहता हूं कि मैंने पाप किया है। पाप मान लेने का अर्थ यही है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में इसकी महान आवश्यकता है। विश्वासी के लिए अपने जीवन में पाप के प्रति व्यवहार करने की यह परमेश्वर की विधि है। एक व्यक्ति मेरे पास आकर रोने लगा कि वह परमेश्वर की सेवा करने में असफल रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी के अनिष्ठा के कारण उसने उसे तलाक दे दिया था और साथ ही उसकी नौकरी भी चली गई थी। मैंने उससे स्पष्ट कहा कि वह मेरे कंधे पर रोने की अपेक्षा परमेश्वर के पास जाकर उससे कहे। वह चाहता है कि मनुष्य उसके पास आए और वही कहे जो वह कहता है, उसी से सहायता मांगे। वही आपका पिता है, आप उसके परिवार में हैं, आप उसकी सहभागिता से अलग हो गए हैं, वह आपका पुनरुद्वार करेगा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, पापों को मान लेने पर परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? वह हमें शुद्ध करता है। हम सब जानते हैं, उड़ाव पुत्र जब घर लौटा था तब उसके पिता ने उसे यूं ही नया वस्त्र डाल दिया था। जी नहीं, उसने उसे स्नान करवाया और नया वस्त्र पहनाया। क्या वह युवक फिर दूर देश जाना चाहता था? कदापि नहीं। पापों को मानने का अर्थ यही है कि आपने पापों से मुंह मोड़ लिया है, अर्थात आपने वही कहा जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और आप भी घृणा करते हैं। पापों को मान लेने से आप पिता के पास लौटाए जाते हैं। मेरे मित्रों, अंत में यूहन्ना कहता है 1:10 में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर को झूठा मत बनाओ, उसे झूठा मत ठहराओ। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के पास जाकर उसे ऐसी बात क्यों नहीं करते जैसे किसी और से आप कभी नहीं करते हैं? उससे दिल खोलकर आप बातें करें, उसे अपनी दुर्बलताएं बताएं, कमजोरियां बताएं। आप अपने पिता से कहें कि आप उसके साथ सहभागिता करना चाहते हैं। उसकी सेवा करना चाहते हैं। उसने अपने पास आने के लिए एक अद्भुत और महान मार्ग तैयार किया है जिसके माध्यम से आप उसके पास आ सकते हैं। इसलिए यूहन्ना कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, आप कोई भी क्यों ना हो, यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं तो वह आपको क्षमा करता है और फिर से अपने परिवार में उस संगति में मिला लेता है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय एक समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय दो से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय दो में हम इन विषयों को देखेंगे, मसीह की मध्यस्थता, प्रिय बालक आपस में सहभागिता कैसे रखें, प्रिय बालकों को संसार से प्रेम नहीं करना है। मेरे मित्रों, इस अध्याय में भी वही विचार चल रहा है कि प्रिय बालक परमेश्वर के साथ सहभागिता में कैसे रहें। परमेश्वर की उपस्थिति, जिसे वह ज्योति कहता है, उसमें रहें। परमेश्वर की सहभागिता में आने का एक और तरीका है कि हम अपने पापों को मान लें। ज्योति में चलने पर हमें बोध होता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, परंतु हमारा जीवन सिद्ध नहीं है, अतः हमें उसके समक्ष अपने पापों को स्वीकार करना है। मेरे मित्रों, अध्याय दो में हम मसीह की मध्यस्थता को देखते हैं। अब हम पहला यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके पांच पद में आरंभ किए गए विषय के उपसंहार पर आ रहे हैं। यूहन्ना ने कहा था, जो समाचार हमने उससे सुना, कौन सा समाचार? यह परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का समाचार है, जो नरक को जाने वाले पापी को लेकर मसीह में विश्वास के द्वारा उसे परमेश्वर के परिवार में ले आता है, जहां वह उत्तराधिकारी और मसीह का संगी वारिस बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है पिता के साथ सहभागिता रखना। आज हम में से कई लोग मसीह के साथ संगति और सहभागिता नहीं रख पाते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सिद्ध हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है और वह चाहता है कि हम अपने मनों को फिराकर अपने पापों का प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, ताकि वह हमारे पापों को क्षमा कर फिर से हमारे साथ सहभागिता कर पाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें बार बार अवसर देता है ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में ला सकें, और यूहन्ना हमें इसी बात के बारे में आगाह करता है कि हम एक पापी हैं और किस प्रकार हम परमेश्वर की निकटता में आ सकते हैं, कैसे हम उसके साथ फिर से सहभागिता रख सकते हैं, क्योंकि एक पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख सकता है। और यही कारण था कि जब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए पहले मनुष्य आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। कहने का तात्पर्य यही है कि पवित्र और अपवित्र एक साथ नहीं रह सकते हैं, और परमेश्वर हम सबसे यही चाहता है कि हम पवित्र बने, और हम अपने आप में पवित्र नहीं बन सकते हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर ने इसका उपाय किया और अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा ताकि वह हमारे पापों को अपने ऊपर में ले ले। उसने हमारे दोष को अपने ऊपर में ले लिया और हमारे बदले वह क्रूस पर चढ़ गया, वह मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज भी वह जीवित है और वह हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। यही कारण है कि यूहन्ना हमसे कहता है कि हम अपने पापों को मान लें। मेरे मित्रों, जब आप अपने पापों को प्रभु यीशु के पास आकर मान लेते हैं कि हाँ, मैंने पाप किया है, मैंने चोरी की है, मैंने हत्या किया है, मैंने व्यभिचार किया है, जो कुछ भी आपने किया है उसको साफ साफ शब्दों में उसे बता दें और उससे कहें कि प्रभु मैंने ये सब किया है। यद्यपि कि वह जानता है, परंतु वह चाहता है कि आप अपने मुख से इस बात को बोलें, स्वीकार करें और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। जब आप ऐसा करते हैं और प्रभु यीशु से क्षमा मांगते हैं तो निश्चय ही वह आपके पापों को क्षमा करता है और आपके जीवन में आनंद दे देता है, सुख देता है, शांति देता है, ताकि आप फिर से परमेश्वर की निकटता में आ सकें। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र अपने पिता के घर से चला गया, संसार में खो गया, संसार के सुख विलास में खो गया, परंतु जब वह लौट करके आया, अपने पिता से उसने क्षमा मांगी तो उसके पिता ने उसे गले लगाया और वह फिर से उस परिवार का सदस्य बन गया, उसे स्वीकार कर लिया गया। आज परमेश्वर ऐसे ही हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो भटके हुए हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उनको पता नहीं है कि किस प्रकार मैं फिर से अपने पिता के संगति में आ सकता हूँ। मेरे श्रोता मित्रों, वह आज आपसे भी बात कर रहा है, वह आपके जीवन को भी चाहता है, वह आपको भी बचाना चाहता है। क्या आज आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के सामने लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को प्रभु के पास लाने के लिए तैयार हैं, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप पापी हैं? यदि हाँ, तो निश्चय ही आज का वचन आपके लिए है और प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपके मुख से उन बातों को सुनने के लिए तैयार है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप एक सही निर्णय के साथ अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंप देंगे। इतना ही नहीं, और आज के बाद आप पाप नहीं करेंगे और उसके डर और भय में, उसके संगति में अपना जीवन बिताएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुताय से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे ताकि आप इस वचन के अनुसार चल पाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
चुका हूँ हीन इतना, खुद पे अपना बस नहीं। हो चुका हूँ हीन इतना, खुद पे अपना बस नहीं। शैतान की बातों से बर्बाद है, माफ कर। मेरे गुना, तुझसे मेरी फरियाद है। आज गुनाह के सबब से